नमस्ते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति भक्ति भवति नैष्ठिके। चौथा स्कंद, सातवां अध्याय, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वराज्यसितं तं यज्ञां पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्। पद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ के प्रदत्त घृत मिश्रित हवियाँ स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित पांच प्रकार की हवियाँ आपकी ही विभिन्न शक्तियाँ हैं और आपकी पूजा पांच प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप परम भगवान हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने चाहिए। विष्णु के एक सहस्र नाम हैं, जिनमें से एक नाम यज्ञ है। यह स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया जाए। मनुष्य द्वारा किए गए अन्य सारे कार्य उसके बंधन के कारण हैं। सबों को वैदिक मंत्रों के अनुसार यज्ञ करने होते हैं। उपनिषदों में बताया गया है कि अग्नि, वेदी, शुभ, पूर्ण चंद्र, चातुर्मास्य, बलिपशु तथा सोम ये आवश्यक वस्तुएं हैं। जिस तरह है वेदों में वर्णित विशिष्ट मंत्र हैं जो चार अक्षरों के होते हैं। एक मंत्र इस प्रकार है, आश्रावयेति चतुराक्षरम अस्तु, शोषदिति चतुराक्षरम यजेति, द्वाभ्याम ये यजामः। ये मंत्र श्रुति तथा स्मृति के अनुसार उच्चरित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। जो लोग भौतिक रूप से बद्ध हैं और भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ करना तथा वर्णाश्रम धर्म का पालन आवश्यक बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु के लिए यज्ञ करने से मनुष्य धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। अतः जीवन का सारा लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, यही यज्ञ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वह अपना जीवन कृष्ण को, जो समस्त विष्णु रूप के मूल हैं, प्रसन्न करने में लगा देता है और नित्य पूजा करके तथा प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि इस कलयुग में एकमात्र यज्ञ तो यज्ञ ही संकीर्तन प्राय है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन है। यह यज्ञ भगवान चैतन्य के चित्र अथवा प्रतियां के समक्ष किया जाता है, जिस तरह अन्य यज्ञ भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह के समक्ष किए जाते हैं। ये स्तुतियां श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में दी हुई हैं। साथ ही इस यज्ञ में उसकी पुष्टि होती है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं विष्णु हैं। जिस प्रकार बहुत पहले भगवान विष्णु दक्ष ने यज्ञ में प्रकट हुए थे, दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस यज्ञ में, इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। अनुवाद दोहराइएगा। तो अलग अलग देवी देवताएं, ऋषि मुनिगण इत्यादि भगवान श्री विष्णु की प्रतिस्तुतियां और सुंदर सुंदर श्लोक अर्पण कर रहे हैं। जब वहां विष्णु दक्ष के यज्ञ स्थली पर प्रकट हुए तो सभी वहां जो भी उपस्थित थे तुरंत समझ गए कि यही विष्णु है, परम भगवान है, और सादर प्रणाम अर्पण करने लगे और फिर ये सुंदर सुंदर स्तुतियां अर्पण करने लगे जो हम पिछले कई श्लोकों में पढ़ते आए हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, मूर्तिमान वेद, अग्निदेव, इंद्रदेव, सारे इन ऋषि मुनि और देवतागणों ने प्रार्थना अर्पित किए हैं और कर भी रहे हैं। और यहाँ पर अग्निदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इस वंदना में कहते हैं कि मैं आपके प्रति आपका सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मैं तेजस्वी हूं, मेरा तेज का उगम स्थान आप ही हैं और आप ही से मेरी सारी शक्ति और तेज आती है। और आगे कहते हैं कि जो भी सारे पांच प्रकार के मंत्रों का उच्चारण होता है ये भी आपके ही शक्तियां हैं, और आप पांच प्रकार के वैदिक मंत्रों से पूजे जाते हैं और आप ही स्वयं यज्ञ हैं। अग्नि का स्थान ये भौतिक संसार में बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि केवल भौतिक संसार में पाई जाती है, भगवान के धाम में नहीं। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे धाम में ना तो सूरज की आवश्यकता है, ना तो चांद की, ना तो बिजली की, ना अग्नि की, क्योंकि वहां पर सब कुछ चिन्मय है। यहां पर हमें अग्नि की आवश्यकता क्यों होती है? क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके वजह से हमें अग्नि चाहिए होती है? एक, भोग बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। आजकल तो वो भी नहीं रह जाता है, सब इलेक्ट्रिसिटी में ओवन कराकर सब कर देते हैं। बताया जाता है कि भोजन पकाने के लिए कई प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? गोबर, और गोबर के बाद में लकड़ी, फिर लकड़ी के बाद में फिर जो भी प्रकृति में जो भी कुछ मिलता है इधर उधर के थोड़े बहुत टूटे फूटे लकड़ी पकड़ी, और उसके बाद में फिर ये गैस वगैरह सब आता है, और आखिर में है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आजकल विशेष करके पश्चिम देशों में और बड़े शहरों में भी आजकल लोग सब बिजली पे ही बनाते हैं। बिजली करंट लगा दिया, सब आसान से चाहिए, उनको आसानी चाहिए बिल्कुल, करंट लगा दिया, चालू कर दिया, गर्म हो गया, उसमें टाइमर भी रहता है, अमुक समय आप कर दीजिए, टाइम सेट करके दूसरा कोई काम करने चले जाइए। भोजन बनाने के लिए भी लोगों को समय नहीं होता है, सब लोग नौकरी में जाते हैं, सब लोग इधर उधर घूमते हैं। तो अग्नि आजकल भोजन पकाने के लिए भी नहीं हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब तक अग्नि नहीं होती है तब तक भोजन का स्वाद नहीं मिलता है। केवल ये बिजली से मामला नहीं चलता है। तो गोबर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अगर हो तो ये सबसे अच्छी बात है। गोकुल धाम में भी यही प्रयास करेंगे। तो ये अग्नि का एक उपयोग हो सकता है। दूसरी बात, गर्मी के लिए उष्णता, अग्नि से हमें गर्मी मिल सकती है। पहले के जमाने में इलेक्ट्रिक हीटर नहीं हुआ करते थे, केवल ठंडी जगहों में, पहाड़ों में भी केवल अग्नि जलाकर उसके पास में बैठते थे। इसलिए पुराने स्टाइल के घरों में आप देखते हैं कि अग्नि जलाने के लिए कोई जगह हुआ करती थी। और फिर अग्नि से रोशनी आती है, रोशनी से हम सब कुछ देख सकते हैं। सूर्य देव का शरीर कैसा है, उनका लोक अग्नि का ही तो लोक है, वो तो अग्नि ही है। इतना भीषण, इतनी भीषण अग्नि है, भयंकर अग्नि है वो, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम उसके पास में भी जाएंगे तो करोड़ों मील दूर से ही हम जल जाएंगे। तो अग्नि से हमें रोशनी मिलती है, सूर्य देव की रोशनी है, इसलिए तो संसार सारा ब्रह्मांड चल रहा है। वो उष्णता दे रहे हैं और वो रोशनी दे रहे हैं। इसके बिना तो सारा ब्रह्मांड में कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। तो ये और एक लाभ है अग्नि का। अग्नि के और लाभ क्या हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम कहना आप भूल चुके वो है यज्ञ। और ये यज्ञ जो है करना, इसके लिए अग्नि अनिवार्य है, क्योंकि वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ में अग्नि होती है, अग्नि में हम आहुतियां अर्पण करते हैं। और अग्नि जो यज्ञ में अग्नि होता है वो भगवान श्री विष्णु का जिह्वा माना जाता है। जैसे हम स्वीकार करते हैं भोजन तो पहले मुंह में डालकर हम जिह्वा पे डालते हैं, तो उसी प्रकार से यज्ञ का मतलब है विष्णु। जैसे यहां अग्निदेव खुद बता रहे हैं यज्ञ का मतलब है विष्णु। और जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं और जब आहुति अर्पण करते हैं तो वो सारा जो यज्ञ स्थली है वो विष्णु है, और अग्नि स्वयं विष्णु का जिह्वा है। और विष्णु के मुखारविंद कौन है? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण जो यज्ञ में आते हैं फिर यजमान का कर्तव्य होता है कि उनको भोजन खिलाएं। कि जो ब्राह्मण वहां उपस्थित होते हैं और जो पेट भर के खाते हैं तो वो विष्णु के मुखारविंद हैं। अगर अग्नि के भीतर हमने आहुतियां सही तरह से अर्पण कर लें और ब्राह्मणों ने अगर सही प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया और ब्राह्मण भी अगर शुद्ध रहे, और ऐसे ब्राह्मण जब भोजन या प्रसाद ग्रहण करते हैं तो यज्ञ पूरी तरह से संपन्न हो जाता है और सफल माना जाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ करना ये बहुत आवश्यक है, और यज्ञ में अग्नि आवश्यक है। लेकिन आजकल अग्नि का प्रयोग समाज में और कई चीजों के लिए भी हो जाता है, जो दंगा फसाद करते हैं। वैसे ये पुरानी प्रथा है, उत्पात करना है तो हनुमान जी ने भी की थी, अपने पूंछ में आग लगाकर सारे लंका में तहस नहस मचा दिया था, सारे लंका को इधर उधर ऊपर नीचे कर दिया। तो अग्नि से फायदे भी होते हैं और अग्नि से नुकसान भी होता है। कई तरह से एक दृष्टि से देखा जाए तो ये अग्नि जो है ये सारे भौतिक सृष्टि के बराबर है। क्यों? क्योंकि अग्नि का सदुपयोग भी हो सकता है कई चीजों के लिए, हमारे शरीर के पालन पोषण के लिए और हमारे आत्मा की उन्नति के लिए भी। लेकिन अग्नि से बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने अग्नि का सही तरह से प्रयोग नहीं किया तो यही अग्नि जिससे आपको इतना लाभ मिल रहा है वही अग्नि आपके घर को जला डाल सकती है। आपके शरीर को जला डाल सकती है, बहुत सारा जो है नुकसान अग्नि से हो सकता है। वही अग्नि एक ओर बहुत उपयोग हो सकता है, दूसरी ओर बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे भौतिक संसार में ये भौतिक शक्ति भगवान की जो है, इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। अनासक्त से विषयान यथारम उपयुंजत, कृष्ण संबंध है सुना फल को वैराग्य, क्या कहते हैं वो श्लोक कौन सा है, युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो युक्त वैराग्य मतलब कि अनासक्त होकर सारे इन भौतिक तत्वों का प्रयोग करना और इनको भगवान की सेवा में लगाना। कृष्ण संबंधे हरि संबंधी वस्तुनः, जब हम हरि के संबंध में सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो फिर इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो फिर ये चीजों का हम अच्छी तरह से प्रयोग करके इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन वही चीजें अगर केवल हमारी इंद्र तृप्ति के लिए हम प्रयोग करें तो फिर क्या होगा, इनका दुरुपयोग होगा और इसलिए इसका नुकसान हमारे ऊपर होगा। इंद्र तृप्ति जितना ज्यादा हम करते हैं उतना ज्यादा हमारा नुकसान होगा। इसीलिए ये सारी भौतिक शक्ति भी अग्नि के समान है। कृष्ण के लिए इसका प्रयोग कीजिए तो बहुत लाभ मिल सकता है, भौतिक संसार के बंधन से आप छूट सकते हैं। और अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, तो यही भौतिक शक्ति आपको जला डाल सकती है, आपके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर सकती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी हमें भौतिक शक्ति से, ये भौतिक ऐश्वर्य से बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत होशियार रहना चाहिए। जब हम जो भक्त होता है जब संसार की किसी भी वस्तु का उपयोग करता है तो उसे सोचना चाहिए कि केवल कृष्ण के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। ये भौतिक संसार में हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास ऐश्वर्य वगैरह आता है तो इसका खतरा होता है। हो सकता है कि इस ऐश्वर्य से, पद से हम प्रभावित होकर कृष्ण को भूल जाएं। अगर हमारे पास पैसा है और अगर हम सोचेंगे कि ये मेरा पैसा है तो उस हद तक जलन हो जाएगी, हमारा शरीर, हमारी आत्मा जल जाएगी। हालांकि आत्मा को जला नहीं सकते लेकिन आध्यात्मिक चेतना नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर कृष्ण की सेवा में हमें कोई पद मिला है और हम सोचते हैं कि मैं अभी कुछ हो गया हूं, मैं कुछ बड़ा बन गया हूं, अभी दूसरों को मुझे सम्मान देना चाहिए और मैं कुछ विशेष हूं, तो फिर क्या होगा, वही पद जिसका प्रयोग करके हम कृष्ण के लिए इतना सेवा कर सकते थे वही पद हमें जला डालेगा। उसी पद की वजह से हमारा सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें अग्नि के बराबर है, सारे भौतिक शक्ति, सारा ब्रह्मांड अग्नि के बराबर है। सही उपयोग कीजिए बहुत लाभ हो सकता है, दुरुपयोग कीजिए नुकसान हो सकता है, जलाकर राख कर देगी। तो चाहे वो धन हो, चाहे वो गाड़ी बंगला हो, चाहे वो कोई पद हो, चाहे वो सम्मान पूजा हो, तो इस प्रकार से चाहे वो हमारे आश्रम क्यों ना हो, हमारी तपस्या क्यों ना हो, अगर हम बड़े तपस्वी भी हैं लेकिन इसका गर्व हमें हो जाता है, तो यही तपस्या जिसके बल पे हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते थे वही तपस्या हमारे जलन का कारण बन जाएगा, हमको जलाकर राख कर दे, यही तपस्या। तो देखिए संसार में सभी कुछ अग्नि के समान है, एक तरफ सही उपयोग कीजिए कितना लाभ हो सकता है। अगर आप नहीं जानते ये कला, ये विज्ञान कि अग्नि को या भौतिक शक्ति का कैसे प्रयोग करना है, तो यही शक्ति जलाकर हमें राख कर दे सकती है। तो इसलिए अग्नि इसका बहुत महत्व रहता है वैदिक शास्त्रों में। और यज्ञ जो अग्नि का प्रयोग यज्ञ में किया जाता है वो त्रेता युग में इसका विशेष महत्व था, क्योंकि उस जमाने में, उस समय, उस युग में बड़े बड़े यज्ञ करना ही युग धर्म हुआ करता था। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखी द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृतयुग अर्थात सत्ययुग में ध्यान मार्ग, ध्यान योग का मार्ग बतलाया गया था। ध्यान करने से, भगवान के ऊपर ध्यान करने से परम सिद्धि की प्राप्ति होती थी, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन फिर भी ध्यान कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। और उस अष्टांग योग के मार्ग में भी आजकल जैसे योगी नहीं थे, जो केवल पाठशालाएं खोलते हैं, योग सिखाने के लिए पैसे लेते हैं और कहते हैं कि योगा अभ्यास करो, थोड़े कसरत करने से सब कुछ हो जाएगा, ये योग नहीं है। योग मतलब भगवान से संबंध जोड़ना। जब तक भगवान से संबंध जुड़ता नहीं है, तब तक वो योग नहीं कहलाता। तो कलयुग सतयुग में ऐसे शुद्ध थे लोग कि ध्यान में बैठकर तुरंत भगवान से संबंध जोड़ सकते थे, ऐसी उनकी क्षमता हुआ करती थी। ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, कि ध्यान में स्थित होकर अपने हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि का वो दर्शन कर सकते थे, उनके उपस्थिति का अनुभव कर सकते थे। और फिर त्रेता युग में यजतो मखय, यज्ञ करना, ये युग धर्म था। द्वापर युग में परिचर्यायाम, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करना, आराधना करना, यही युग धर्म हुआ करता था। और कलयुग में तद हरि कीर्तनात्, तद मतलब ये तद शब्द का क्या महत्व है, इसका मतलब है कि जो लाभ सतयुग में 60,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष ध्यान करने से प्राप्त होता था, जो लाभ त्रेता युग में विशाल बड़े बड़े यज्ञ करने से हो जाता था, द्वापर युग में जो लाभ बड़े बड़े मंदिरों में बहुत ही ऐश्वर्यशाली भगवान के अर्चा विग्रह की आराधना करने से जो लाभ प्राप्त होता था, वही लाभ, तद वही लाभ हमें प्राप्त होगा कलयुग में। कैसे? हरि कीर्तनात्, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, कलयुग में लोग इतने पतित हैं, लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने ऐसा मार्ग दिया है कि इसी जीवन में 60 वर्ष में हम उस गति की प्राप्ति कर सकते हैं जो कि सतयुग में 60,000 वर्ष के बाद में प्राप्त होती थी। और इतना ही नहीं, जिस गति की प्राप्ति हम यहां 60 वर्ष में कर सकते हैं कलयुग में, वो सतयुग में भी प्राप्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस कलयुग में क्या विशेष बात है, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो राज खोल के दिया है जिससे हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बहुत कम लोग गोलोक वृंदावन जाते थे। ज्यादा लोग कहां जाते थे? वैकुंठ में, विष्णु या नारायण की पूजा करके उनके धाम में जाते थे। जैसे ध्रुव महाराज ने कृष्ण गर्भ अवतार में भगवान किया का पूजन किया और भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में आए, नारायण स्वरूप था। तो हम जितना भी वर्णन सुनते हैं श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद 10वें स्कंद तक, सारे नारायण विष्णु स्वरूप की उपासना है। बीच बीच भी जहां कृष्ण माता कुंती देवी जो है वो कृष्ण से प्रार्थना करती है, लेकिन वो तो उस जमाने की बात ही है, द्वापर की बात है। लेकिन जो प्राचीन कथाएं हैं उनको अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सारे विष्णु और नारायण स्वरूप है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या हमें राज खोल कर दिया है? वृंदावन के आदि पुरुष श्याम सुंदर गोविंद, इनकी आराधना, इनकी सेवा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो मत है, उनका जो सार, उनकी जो शिक्षा का सार है, वो अद्वैत आचार्य के एक शिष्य श्रीनाथ आचार्य ने एक सुंदर से श्लोक में कहा है। कौन सा है वो श्लोक? अक्सर हम बोलते हैं, तो बता सकते हैं? आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्रादर न परह। इसमें यह बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है वो बतला रहे हैं। सबसे पहली बात, आराध्य भगवान, हमारे सबसे आराध्य भगवान कौन है? आराध्य भगवान व्रजेश तनयः। व्रजेश कौन है? व्रज के ईश्वर, व्रज के राजा। कौन है व्रज के राजा? नंद महाराज। नंद महाराज के तनय, तनय मतलब सुपुत्र, उनके पुत्र कौन है? कृष्ण। क्या यही कृष्ण विष्णु है? हाँ है भी, लेकिन अलग है। तो ये हमारे आराध्य देव हैं। इस श्लोक में ये नहीं बताया गया कि आराध्य भगवान वैकुंठ के विष्णु हैं, या द्वारका के कृष्ण हैं, या मथुरा के कृष्ण हैं, या नरसिंह देव हैं, या अयोध्या के रामचंद्र हैं, बताया गया है, या फिर तिरुपति के बालाजी हैं, नहीं, बताया गया है व्रजेश तनयस। ये जो सिद्धांत है ये पहले किसी ने नहीं दिया था। आदि पुरुष गोविंद, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये गोविंद की आराधना केवल चैतन्य महाप्रभु ने आकर ये बतलाया है। हालांकि गोविंद कृष्ण की पूजा तो अनेक हजारों हजारों सालों से रही है, लेकिन ज्यादातर कृष्ण का भजन करते थे वैकुंठ भाव में, लेकिन ब्रज भाव में, माधुरी भाव में करना बहुत दुर्लभ है। ये ऐसे हुए हैं लोग, लेकिन बहुत कम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को फैलाकर सबके लिए आसान बना दिया। आगे क्या है? आराध्य भगवान व्रजेश तनयस। तो आगे इस बात को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि कोई कह सकता है कि कृष्ण है ना व्रजेश तनयस, कृष्ण तो द्वारका में भी रहते हैं, कृष्ण तो वैकुंठ में भी रहते हैं, कृष्ण में विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो श्रीनाथ आचार्य इस बात को अधिक स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? तद्धाम वृंदावनम, ताकि कोई ये ना समझे कि तद्धाम वैकुंठ, तद्धाम अयोध्या, तद्धाम द्वारका। नहीं, स्पष्ट करते हैं। अगर किसी को कोई गलतफहमी हो भी जाए व्रजेश तनय सुनकर, तो कहते हैं कि सुनो, ये धाम भी उनका वृंदावन है, गोलोक वृंदावन। मतलब वो द्वारका वाले कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, मथुरा वाले कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, मथुरेश द्वारकाधीश की बात नहीं कर रहे हैं, वो वृंदावन वाले बांके बिहारी जो वंशी वट में खड़े हुए, यमुना के किनारे खड़े हुए बांसुरी बजाते हैं और गोपियों के साथ में रास रचाते हैं और गायों को चराने ले जाते हैं, वो कृष्ण की बात कर रहे हैं। वो और किस प्रकार की उपासना सबसे परम है? रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गे न वा कल्पिता। किनकी उपासना परम है? व्रज वधु वर्गे न, व्रज वधु वर्ग के जो भक्त हैं। व्रज वधु मतलब कौन? जो गोपियां हैं। व्रज वधु वर्गे न वा कल्पिता रम्या काचित उपासना, तो इनकी गोपियों की जो उपासना है कृष्ण के प्रति, वो उपासना सर्वोत्तम है। और ये सारा ज्ञान, ये सारे सिद्धांत हमें कहां से मिलते हैं? चैतन्य महाप्रभु से ने क्या ऐसे ही अपना मत प्रस्तुत किया, यूं ही मत प्रस्तुत किया है कि किसी शास्त्र से भी लिया है? तो चैतन्य महाप्रभु ने ये कहां से लिया है सिद्धांत? उपनिषद से लिया है, या तो फिर आगम शास्त्रों से लिया है, या तो फिर कहां से लिया? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। ये जो प्रमाण हमारा है इस सिद्धांत के लिए वो है श्रीमद् भागवतम। क्यों? ये अमल है, इसमें कोई मल नहीं है। अमलम पुराणम इसको कहते हैं। और आगे चल के श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। और मनुष्य जीवन के लिए सबसे ऊंचा जो उद्देश्य है वो कौन सा है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं। मोक्ष भी हमारा सिद्धांत नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम। किस कृष्ण का प्रेम? वृंदावन वाले कृष्ण का प्रेम, नंद महाराज के सुपुत्र नंद नंदन यशोदा नंदन, देवकी नंदन नहीं, वसुदेव नंदन नहीं, लेकिन नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण। और आगे चल के क्या बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर न परा, कि ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। श्रीनाथ आचार्य कह रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु का मत है और इस मत के लिए हमारा पूरा सम्मान है, आदर सत्कार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो हम इसे स्वीकार करते हैं। तत्र अदर न परा, इससे अधिक किसी को हम नहीं मानते हैं, यही हमारा सबसे ऊंचा सिद्धांत है। तो इस कलयुग में भी हम उसी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, उससे अधिक ऊंचा, एक अधिक ऊंचे गति की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि सतयुग में भी उपलब्ध नहीं था। तो देखिए हम कितने भाग्यशाली। और चैतन्य महाप्रभु के यहां संसार में प्रकट होने के केवल 500 साल बीत चुके हैं केवल, और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिवस करोड़ों 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 साल लंबा है, इसकी अवधि, ब्रह्मा जी के एक दिवस की अवधि करोड़ों साल की है, लेकिन इस करोड़ों साल में हम कहीं भी आ सकते थे, लेकिन हमारा जन्म अब केवल 500 साल बाद में हुआ। तो हम कितने भाग्यशाली हैं देखिए। इसलिए भागवत में ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं कि हालांकि कलयुग में इतने दोष हैं, ये दोषों का सागर है, कलो दोष निधे ही राजन, हालांकि ये दोषों का सागर है, फिर भी हम ये कलयुग की उपासना करते हैं, इसकी आराधना करते हैं, कलयुग को हम पूजते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में भगवान ने मामला इतना आसान बना दिया है कि बस हमें कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, केवल भगवान का नाम का संकीर्तन करने से ही सब कुछ मिल जाता है। संकीर्तन के लिए कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, यहां कोई कड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, हिमालय में जाकर बाल को जटा में बांधकर फिर वो योगासन में बैठने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम संकीर्तन करते रहिए, उसी सफलता की प्राप्ति होगी, उससे अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग्रह परम व्रजेत। कि हे राजन, सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि कलयुग तो दोषों का राजन है, दोषों का सागर है, लेकिन अस्ति ही एक महान गुण है, एक महान गुण ये कलयुग में, जिस महान गुण की वजह से सारे दोषों का सागर एक बूंद के समान बन जाता है। और वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण कीर्तन का मार्ग बहुत स्पष्ट बताया है, कीर्तनाद एव दुर्गस्य नहीं बताया, कीर्तनाद एव ब्रह्मास्य शिवस्य नहीं बताया, कीर्तनाद एव विष्णुस्य भी नहीं बताया, कीर्तनाद एव कृष्णस्य। मुक्त संगह, जिस संकीर्तन करने से संसार से विरक्ति हो जाती है, और परम व्रजेत, भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो सकती है केवल कृष्ण कीर्तन करने से। इसलिए इसी कृष्ण कीर्तन के मार्ग को युग धर्म इस कलयुग में बतलाया गया है, और इस युग धर्म का उद्घाटन करने आए थे चैतन्य महाप्रभु, यो संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन करने आए थे। कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंते ही सुमेधशः। कृष्ण कीर्तन का मार्ग लेने बतलाने के लिए यहां आए हैं चैतन्य महाप्रभु, वही चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं, लेकिन भक्त का रूप लेकर आए हैं सिखलाने के लिए कि संकीर्तन यज्ञ कैसे करना चाहिए। और जो सुमेधस हैं, बुद्धिमान हैं, वो इस संकीर्तन यज्ञ में शामिल होंगे। तो हमें सबको यजमान बनना है, लेकिन कैसे बनना है? इस संकीर्तन यज्ञ करने से। आजकल त्रेता युग के समान या उसके पहले जैसे दक्ष ने किए ऐसे यज्ञ करना हमारे लिए संभव नहीं है। अग्नि में आहुतियां डालना हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। जैसे कोई संस्कार हम करते हैं, दीक्षा का समारोह अनुष्ठान होता है, विवाह संस्कार होता है, तो ऐसे समय हम छोटे यज्ञ करके हम अग्नि में आहुतियां डालते हैं, लेकिन इस यहां तक सीमित है। इससे अधिक यज्ञ करना हमारे लिए अभी कलयुग में संभव नहीं है। कहां है वो ब्राह्मण, कहां है वो घी जहां इतना शुद्ध घी भी मिल सके हमें इतनी मात्रा में, तो ये सब संभव नहीं है। लेकिन इस कलयुग में यही एकमात्र यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, यही एकमात्र यज्ञ हमारे लिए काफी है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहे तो हम यशस्वी हो जाएंगे, जीवन की सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां अग्निदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यज्ञ जो भी होते हैं उसमें मेरा प्रमुख स्थान होता है, और मैं इसलिए रह सकता हूं कि ये आपकी कृपा है। मेरे में जो भी तेज है वो सब आपकी वजह से है। वास्तव में अग्निदेव जो है उन्होंने दक्ष की जो 16 पुत्रियां हैं उनमें से एक पुत्री स्वाहा से विवाह किया था। दक्ष की कितने पुत्रियां थी आपको याद है, कन्याएं थी 16। 16 में से 13 उन्होंने धर्म नाम के देवता को के हवाले कर दिया विवाह में। तो धर्म के 13 पत्नियां थी जो कि सारे दक्ष के पुत्री थी, और 14 जो हैं उन्होंने पितृलोक में दिए। 16 और 15 जो हैं उन्होंने अग्निदेव को दिए, और 16 शिव जी को, जिनका नाम क्या था, सती। तो ये 15 कन्या है उनकी पत्नी, अग्निदेव की पत्नी, जिनका नाम है स्वाहा। और अग्निदेव और स्वाहा के 3 पुत्र हुए जिनका नाम है, इस स्कंद में ही हम पढ़ चुके हैं, पावक, पवमान और शुचि। और ये 3 भी अग्निदेव माने जाते हैं। तो पिता हैं उनके, 3 लड़के हैं, और फिर इन 3 लड़कों से इन्होंने भी विवाह किया और इनके भी संतान हुए। तो 45 इनके पुत्र हुए। तो ये 45 और फिर 3 और फिर 1 अग्निदेव, कुल मिलाकर 49 अग्निदेव हुए। ये सारे अग्निदेव, सारा अग्नि का मामला यहाँ डिपार्टमेंट संभालते हैं सारे ब्रह्मांड में। और बताया जाता है कि जब भी अग्नि में आहुति अर्पण हो जाती हैं तो ये अग्निदेव जो है आकर सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी सारे आहुतियां स्वीकार करते हैं और फिर सारे देवताओं में बांट देते हैं। विशेष करके ये 3 अग्निदेव अभी थोड़े उनको मामला सौंप देते हैं, जैसे पिता बड़े हो जाते हैं, उम्र हो जाती है तो बच्चों को बिजनेस थोड़ा थोड़ा देने लगते हैं ना। अग्निदेव कहते हैं अभी ज्यादा काम करना है, इधर उधर जाना करना है, देवताओं को बांटना है, वो आप कर लो। इसलिए पावक, पवमान और शुचि ये अधिक काम करते हैं, इसलिए ये भी अग्निदेव कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से वायुदेव भी 49 है ऐसे, जैसे वो कैसे हुई इंद्रदेव, वो कथा और कभी बताएंगे। तो इंद्रदेव की योजना से वो हो गई, हालांकि इंद्रदेव ऐसा नहीं चाहते थे, कुछ विपरीत ही परिणाम हो गया। लेकिन ऐसे अग्निदेव वायुदेव कई हो सकते हैं। तो यहाँ पे अग्निदेव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मेरे तेज का कारण केवल आप ही हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तेजस तेजस्वी नाम अहम। कृष्ण भगवान गीता में भी घोषणा करते हैं कि अगर किसी में कोई तेज है तो वो तेज का कारण भी मैं ही हूं। तो हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए कि जो भी क्षमता थोड़ी बहुत हमारे अंदर पात्रता है, जो भी कुछ हमारी योग्यता है कण मात्र भी, वो भी आपसे ही आती है, आपकी कृपा से ही हमें प्राप्त हुई है, आपकी कृपा से भी हम ये भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। नहीं तो पता नहीं हम कौन से कीचड़ में पड़े हुए होते, इंद्र तृप्ति के कीचड़ में, संसार में पड़े हुए होते, पैसा कमाने में लगे ज्यादा से ज्यादा और इंद्र तृप्ति करने में लगे हैं, समाज में आगे ऊपर चढ़ने में लगे हुए हैं, इन सब चीजों में हम फंसे रहते हैं। लेकिन आपकी कृपा से हमें आपकी भक्ति करने का अवसर, सुअवसर प्राप्त हुआ है, और जो भी कुछ हम कर भी रहे हैं सेवा आपके लिए केवल आपकी कृपा की वजह से। तो इस प्रकार से हम अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसे नम्र भावना की आवश्यकता है जिससे भगवान फिर हमें खोलकर, उनका हृदय खोलकर हमें जितना चाहे उतनी कृपा देंगे और फिर हम उनके भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है कि ये हमने अभी सुना कि 39 49 अग्निदेव हैं, तो लेकिन हम जैसे सुनते हैं कि पेट में भी अग्नि है, जठर अग्नि जिससे पचन होता है भोजन का, तो उनका उनके बारे में क्या है? वास्तव में ये भी तो वही अग्नि शक्ति है, वही अग्नि शक्ति का एक स्वरूप है ये, लेकिन थोड़े अलग रूप में यहां प्रस्तुत होता है। जहां भी अग्नि की शक्ति है वही देवता उनके इंचार्ज में है। अहम वैश्वानरो भूतवा, कृष्ण कहते हैं मैं ही वो वैश्वानरो, मतलब पेट में अग्नि जो जलती है, तो वो भी भगवान के स्वरूप है, वही अग्नि शक्ति अंदर जलती है। और इसलिए पचन नहीं होता था, कहते मंदाग्नि है, आयुर्वेद में शब्द है मंदाग्नि, अग्नि पचन की अग्नि मंद हो चुकी, इसलिए डाइजेशन पचन अच्छी तरह से नहीं होते, तो पेट में अग्नि को बढ़ाना है। लेकिन भीम को वृकोदर कहते हैं, उनके उदर में यह अग्नि बहुत प्रज्वलित रूप से जलती रहती है, इसलिए भीम तो भीम जितना भी खाते हैं उतना उनको कम पड़ जाता है, क्योंकि पचन अग्नि उनकी इतनी तेज है जो खा सकते हैं। तो ये भी अग्नि का स्वरूप है और शक्ति भी अग्निदेव से ही आती है, लेकिन सूक्ष्म है। कभी कभी जब भक्त लोग भोग चढ़ाए बिना